स्वतंत्रता प्रभात।
दोस्तों, कार्यक्रम स्वतंत्रता प्रभात पर विशेष कार्यक्रम के साथ आपकी सेवा में हाजिर हैं। आज के कार्यक्रम में हम इस्लामिक क्रांति और मुस्लिम महिलाओं के आदर्श को जीवित किए जाने के विषय पर चर्चा करेंगे। मोहम्मद मेहदी और मरियम मेहतादी का सलाम स्वीकार कीजिए।
बारह बहमन वर्ष 1357 हिजरी शमसी अर्थात 1 फरवरी 1979 ईस्वी को इस्लामी क्रांति के संस्थापक स्वर्गीय हजरत इमाम खुमैनी 15 साल के निर्वासन के बाद ईरान लौटे और ईरानी जनता ने उनका अभूतपूर्व और हार्दिक स्वागत किया। ईरान की जागरूक और सचेत जनता ने स्वर्गीय इमाम खुमैनी का इतना व्यापक और अभूतपूर्व स्वागत किया कि यहाँ पर ये कहा जा सकता है कि समकालीन में किसी भी देश की जनता ने अपने किसी भी पसंदीदा नेता का इस तरह स्वागत नहीं किया है।
इस्लामी क्रांति की सफलता के बाद पिछले 43 वर्षों के दौरान महिलाओं की प्रतिष्ठा को पुनर्जीवित किए जाने के बारे में बहुत से प्रसार किए गए। इस्लामी क्रांति की सफलता में महिलाओं और पुरुषों का बराबरी का हिस्सा है और इस दौरान महिलाओं ने बहुत ही अहम और प्रभावी भूमिका अदा की। इस्लामी क्रांति की सफलता से पहले पश्चिम के सांस्कृतिक हमलों की वजह से महिलाओं पर ललचाई नज़रों से देखा जाता था और महिलाओं को एक साधन और हथकंडे के रूप में प्रयोग किया जाता था। महिलाओं की सारी विशेषताओं और इंसानियत की धज्जियां उड़ा दी गई थीं और महिला होना एक बुरी चीज समझा जाने लगा था।
जिस तरह से पश्चिमी समाज में महिलाओं को एक साधन और वस्तु के रूप में देखा जाता था, यही चीज धीरे धीरे ईरान पहुंचने लगी थी, जिसकी वजह से महिलाओं की पहचान धूमिल हो गई थी और शाही शासन में महिला होना एक अपराध समझा जाता था। ये चीज 19वीं सदी से शुरू हुई और पश्चिम में विज्ञान और तकनीक में प्रगति की वजह से पूरे समाज पर भौतिकवाद का राज हो गया और सेक्युलरिज्म नामक विचारधारा ने अपनी जड़ें मजबूत करना शुरू कर दीं। सेक्युलरिज्म धर्म को जीवन और राजनीति से अलग समझता है और धर्म पर अमल और धर्म के बारे में सोच विचार को ज़्यादा महत्व नहीं देता।
सेकुलरिज्म और सांस्कृतिक विचारधारा 19वीं शताब्दी के अंत में और 20वीं शताब्दी के आरंभ में पश्चिम के पूंजीवादियों की सहायता से मुस्लिम देशों तक पहुंचाई गई। इस विचारधारा में विकास और नवीनीकरण को भी जगह दी गई। उसके बाद से यूरोप और अमेरिका मुस्लिम देशों के विकास और प्रगति के नमूने के तौर पर पेश होने लगे और धर्म को किनारे लगा दिया गया था। इसी वजह से ईरान में शाही सरकार जैसी बहुत सी सरकारों ने मॉडर्निज्म की ओर कदम बढ़ा दिया और इस चीज ने महिला और परिवार व्यवस्था पर सामूहिक और व्यक्तिगत रूप से बहुत असर डाला।
उस समय की ईरान के राजा रजा खान ने, जो वास्तव में साम्राज्यवादियों का नौकर था, देश को नवीनीकरण के मार्ग पर लाने के लिए महिलाओं को प्रदान न करने का आदेश जारी किया। उस समय तक ईरानी महिला समाज में पूरे पर्दे के साथ उपस्थित होती थीं और तब पुलिस के बैत और लाठियों से उनके सिरों से पर्दे छीन लिए गए और उनको बेपर्दा कर दिया गया। शाह काफ़ी पढ़ा लिखा और जानकारियां रखता था, लेकिन उसको ये वास्तविकता समझ में नहीं आई कि ईरान का धार्मिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और सामाजिक आधार इस्लाम धर्म की सर्वोच्च शिक्षाओं पर रखा हुआ है और महिलाओं से पर्दे को छीन लेना समस्याओं के पैदा होने का कारण बनेगा।
ये समस्या इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि बहुत से पर्देदार महिलाएं अपने पर्दे और हिजाब की रक्षा करते हुए घरों में कैद होकर रह गईं और उन्होंने कई साल घर के बाहर कदम नहीं रखा। ब्रिटिश सैनिकों द्वारा रजा शाह के हटाए जाने के बाद मोहम्मद रजा शाह ने भी अपने बाप के रास्ते पर ही चलने का फैसला किया। उसने महिलाओं के कपड़ों में सुधार और पुरुषों के साथ महिलाओं के बर्ताव जैसे कई क्षेत्रों में सुधार के प्रयास किए। यहाँ तक कि सरकार और गैर सरकारी स्तरों पर इस मामले पर बहुत अधिक ध्यान दिया जाने लगा। दूसरे शब्दों में यूं कहा जा सकता है कि विशेष नीति के अंतर्गत महिलाओं के हिजाब को एक बुरी चीज़ के तौर पर दिखाने का प्रयास किया और इसके विपरीत पुरुषों के साथ कड़ाई भी करता था।
देश की पहली हस्ती के रूप में ईरान का शाह खुद भी महिलाओं को एक साधन या वस्तु के रूप में देखता था और महिलाओं को नीच नज़र से देखने और चरित्रहीन के रूप में मशहूर था। इतिहास लिखने वालों ने शाह के भ्रष्टाचार और उसकी काली करतूतों से पर्दा उठाया। इसकी एक मिसाल शाही गार्ड और शाह के रक्षक दस्ते का प्रमुख अली शाहबाजी अपनी डायरी में शाह की चरित्रहीनता के बारे में लिखता है कि जब अलम मंत्री बनी तो उन्होंने अपने मंत्रालय में शाह के मनोरंजन के लिए एक विशेष कार्यक्रम बनाया था। उनका ये काम था कि वो शादीशुदा महिलाओं, सुंदर लड़कियों और पद की चाह रखने वाली औरतों को शाह के लिए लाती थीं।
इस्लामी क्रांति के संस्थापक स्वर्गीय इमाम खुमैनी रहमतुल्लाह अलैह शाही काल में महिलाओं की मजलूमी के बारे में कहते हैं कि महिलाएं दो चरणों में मजलूम रही हैं। एक अज्ञानता के काल में जब इस्लाम धर्म ने मानवता पर एहसान किया और महिलाओं को उसकी मजलूमी से बाहर निकाला। दूसरा चरण हमारे ईरान में महिलाएँ मजलूम हुईं, वो पहले और बाद वाले शाहों के काल था। उन्होंने महिलाओं पर जुल्म की इंतहा कर दी, महिलाओं पर तरह तरह से जुल्म ढाए, महिलाओं को उनकी प्रतिष्ठा और इज्जत की जगह से उतार दिया, आध्यात्मिक जगह से संपन्न महिला को नीचे गिरा दिया और आज़ादी, महिलाओं की आज़ादी और पुरुषों की आज़ादी के नाम पर महिलाओं और पुरुषों दोनों से ही आज़ादी छीन ली और हमारे युवाओं को पथ भ्रष्ट और गुमराह कर दिया। इस्लामी समाज में महिलाओं के स्थान और उसकी पहचान का मापदंड एक ईश्वरवादी विचारधारा के आधार पर है। इस नज़रिए में महिलाओं को काम, पति, पढ़ाई लिखाई और अन्य कामों का चयन करने की पूरी आज़ादी है। जो चीज़ महिलाओं को उनकी पहचान दिलाती है वो समाज और पीढ़ी के प्रशिक्षण में उसकी भूमिका है। मातृत्व की भूमिका ईश्वरीय दूतों की भूमिका रही है। संतानों के प्रशिक्षण में माँ का बहुत अधिक धैर्य और उसकी अथक मेहनत हमको मानवता के मार्ग में नबियों और ईश्वरीय दूतों के प्रयासों की याद दिलाता है।
यहाँ पर ध्यान योग्य बिंदु यह है कि इस्लामी क्रांति पूर्ण रूप से धार्मिक क्रांति थी जिसने इमाम खुमैनी के नेतृत्व में धार्मिक मूल्यों को पुनर्जीवित करने, विदेशियों पर बिना किसी निर्भरता और पूरब की साम्राज्यवादी नीतियों की निंदा के नारों के साथ सफल हुई। इस्लामी क्रांति दुनिया में दो ध्रुवीय व्यवस्था के समीकरणों के विपरीत सफल हुई और उसने मध्य पूर्व में अमेरिका की विस्तारवादी नीतियों को भारी नुकसान पहुंचाया। अमेरिका के प्रभाव से ईरान को निकालने के कारण अमेरिका ने ईरान के विरुद्ध हर प्रकार की राजनीतिक, आर्थिक व सैनिक शैलियों का प्रयास किया। विद्रोह के लिए प्रयास, सीमावर्ती प्रांतों में अलगाववादी गुटों का समर्थन, आर्थिक प्रतिबंध, 8 वर्ष थोपा गया युद्ध और इराक के बासी शासन द्वारा ईरान को तबाह करने की योजना, वो कार्रवाइयाँ थीं जो ईरान की नव आधार इस्लामी व्यवस्था को उखाड़ फेंकने के लिए अमेरिका ने अंजाम दी थीं। किंतु ईरानी राष्ट्र और सरकार ने समस्त क्रांतियों के विपरीत इन समस्त षड्यंत्रों को विफल बनाकर अल्पावधि में अपनी व्यवस्था को बहुत अधिक मजबूत बना लिया और राजनीतिक, मानवीय, विज्ञान, अर्थव्यवस्था, सामाजिक, सांस्कृतिक सुरक्षा और प्रतिरक्षा के क्षेत्रों में आश्चर्यजनक प्रगतियां की हैं।
इस्लामी क्रांति के संस्थापक स्वर्गीय इमाम खोमेनी रहमतुल्लाह अलैह भी खुद भी वरिष्ठ धर्मगुरु थे और वो ये जानते थे कि महिलाओं को किस तरह से विकास के मार्ग पर अग्रसर किया जाए या धार्मिक दृष्टि से उनका क्या महत्व है और उनको इस्लाम धर्म कितनी अहमियत देता है। उनका ये ख्याल था कि महिला की अपनी सज्जनता, प्रतिष्ठा और इज्जत का एक खास मकाम है। महिला अध्यात्म के सर्वोच्च स्थान तक पहुंच सकती है और साथ ही वैज्ञानिक, शैक्षिक, राजनैतिक और सामाजिक गतिविधियां भी अंजाम दे सकती है। इमाम खोमेनी का मानना था कि इस्लाम की मूल्यवान नज़र में इंसान का लक्ष्य, चाहे महिला हो या पुरुष, ईश्वर का सामिप्य हासिल करना है और इस प्रकार महिलाओं के लिए ईश्वर की बंदगी और उसकी उपासना कारण बनती है कि वो ईश्वर का सामिप्य प्राप्त करे और उच्च स्थान हासिल करे।
इमाम खुमैनी रहमतुल्लाह अलैह अपने मूल्यवान बयान में कहते हैं कि महिला इंसान है और वो भी एक महान इंसान। महिला समाज की प्रशिक्षणकर्ता होती है। महिलाओं के दामन से इंसान पैदा होते हैं। देशों का कल्याण और उसका दुर्भाग्य महिलाओं के अस्तित्व पर निर्भर है। महिला अपने अच्छे प्रशिक्षण से ही इंसान पैदा करती है और अपने सही प्रशिक्षण से देश को आबाद करती है।
स्वर्गीय इमाम खुमैनी रहमतुल्लाह अलैह अपने एक अन्य कथन में महिलाओं के संबंध में पैगंबर इस्लाम के सुंदर बर्ताव और महिलाओं के बारे में इस्लाम के नज़रिए को बयान करते हुए कहते हैं, इतिहास गवाह है कि पैगंबर इस्लाम अपनी पुत्री हज़रत फातिमा जहरा सलामुल्लाह अलैहा का बहुत अधिक सम्मान करते थे ताकि दुनिया को ये बताएं कि महिला समाज में एक विशेष स्थान रखती है और ये अगर पुरुषों से महान नहीं है तो कम भी नहीं है।
तो दोस्तों, कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अनुमति दीजिए।